अहाना का कानपुर आए कुछ वक्त बीत गया था। उसने वापस से स्कूल ज्वाइन भी कर लिया था। परीक्षाएं भी शुरू हो गई थी, जिससे अहाना कुछ व्यस्त हो गई थी। दूसरे तरफ अक्षय भी कुछ बिजी चल रहा था, पर सुबह मैसेज पर बात और रात को कॉल व वीडियो कॉल पर बातें हो जाया करती थीं। कभी पहल अहाना करती तो कभी अक्षय। उनका रिश्ता धीरे धीरे सुधर रहा था। अहाना बेझिझक खुलकर उससे बात करने लगी थी। शायद वो डर जिसने अब तक उसे अक्षय की ओर बढ़ने से रोका हुआ था, अब खत्म हो गया था। अहाना की अक्षय के अलावा बाकियों से भी एक दो बार बात हुई थी। रूपाली जी से जितनी भी बार उसकी बात हुई, घुमा फिराकर वो उसे यही ताने मारती थी कि क्या फायदा ऐसी शादी करवाने का जब बेटे को अकेले ही रहना है और बहू के होते हुए सब काम की जिम्मेदारी सास को ही संभालनी है। अभी से अहाना पर उनका दबाव डालना शुरू हो चुका था कि काम धाम छोड़कर आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाले। अहाना किसी तरह बात टाल दिया करती थी। एक तरफ रूपाली जी थीं, जिनके व्यवहार से अभी से साफ जाहिर होता था कि वो अपना बना बनाया करियर छोड़कर घर की चारदीवारी में कैद हो जाएं और बस घर गृहस्थी में रम जाएं, तो दूसरे तरफ अभिजीत जी थे, जिनसे उसकी ज्यादा बात नहीं हुई थी, पर जब भी बात हुई उन्होंने बस इतना ही कहा कि वहां की चिंता ना करें और अपने भविष्य पर ध्यान लगाए। जैसे उन दिनों घर की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से संभाली थीं, वैसे ही अपने काम को भी पूरे लगन से करें। कानपुर लौटने के बाद अहाना के लिए ये राहत की बात रही थी कि उसे उन भारी भरकम कपड़ों और गहनों से छुटकारा मिल गया था। सर पर आंचल या घूंघट का कोई झंझट नहीं था। अब वो अपनी सादगी भरे रूप में लौट चुकी थी। दूसरा, अब सारे घर की जिम्मेदारियां उसके सर पर नहीं थी। उसे किसी की कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ती थी। अपना घर का, जहां सब उसे बहुत चाहते थे, उस पर कोई रोक टोक या पाबंदी नहीं थी और वो खुलकर रहती थी। हाँ, उन दिनों अक्षय के साथ रहने के बाद अब कहीं ना कहीं उसकी कमी खलती थी उसे। सिर्फ अक्षय और अहाना ही नहीं थे जिनका रिश्ता फोन की बैसाखी पर टिका था। बातों का सिलसिला तो कहीं और भी शुरू हो चुका था। हालांकि अब भी उनके दरमियान बातें कम और बहस नोकझोंक छेड़छाड़ ज्यादा हुआ करती थी, पर अब धीरे धीरे वे भी एक दूसरे के कुछ करीब आने लगे थे। अंतरा मैडम गर्व से सीना तानकर उसे अपने कारनामों के बारे में बताती थीं और अनबय भी बड़ी ही दिलचस्पी के साथ उसके कांडों के बारे में सुनता और अपने मज़ेदार किस्से भी उससे साझा करता। एक से ही थे दोनों और पटने लगी थी अब उनकी। परसों होली थी और सब घरों में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। शादी के बाद अक्षय अहाना दृशांत पल्लवी दोनों जोड़ों की ये पहली होली थी, जिसके लिए कहीं ना कहीं वे चारों ही उत्सुक थे। बस फर्क इतना था कि अहाना दृशांत अपने शांत नेचर के कारण उसे जाहिर नहीं कर रहे थे, जबकि पल्लवी की तो लंबी चौड़ी प्लानिंग तैयार थी और अक्षय बेचारा अपनी बीवी के बिना वहां मजनू बना आहें भर रहा था। रात का वक्त था। बालकनी में खड़ी अहाना अक्षय से बात कर रही थी। बीते कुछ दिनों की तरह आज भी अक्षय ने बातों बातों में ये बात छेड़ दी थी। अहाना, शादी के बाद ये हमारी पहली होली है और आप मुझसे इतनी दूर हैं। शब्दों में मायूसी घोल अक्षय ने अपना दुख प्रकट किया। जवाब में अहाना सौम्यता से मुस्कुरा दी। आ जाइए आप हमारे पास, आपको किसने रोका है? मैं आऊं? क्या आप यहां मेरे पास नहीं आ सकती? अक्षय ने ही उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखते हुए ये सवाल किया था और जवाब में अहाना ने मायूसी से इनकार में सर हिला दिया। नहीं, हम नहीं आ सकते। अभी यहाँ बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। ऐसे में हमारा कहीं जाना मुमकिन नहीं और रुक तो बिल्कुल नहीं सकेंगे। और अगर हम किसी तरह इसे मुमकिन बना भी लें, तब भी चाहकर भी हम अभी वहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि शादी के बाद ये हमारी पहली होली है और माँ कहती हैं कि नई शादी वाली लड़कियों को ससुराल में होलिका की आँच नहीं देखनी चाहिए। इससे उनके शादीशुदा जीवन में परेशानियाँ आती हैं। तो क्या आपका मन नहीं हमारी पहली होली एक साथ सेलिब्रेट करने का? मन होकर भी क्या करेंगे, आप यहाँ आएंगे नहीं और हम वहाँ आ नहीं सकते। अहाना ने मायूसी भरे स्वर में जवाब दिया, जिसे अक्षय ने भी महसूस किया और बात बदलते हुए बोला, अहाना, आपको वहाँ गए हुए इतने दिन हो गए, क्या आपको इन दिनों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? अहाना का ध्यान भटका था और साथ ही चेहरे के भाव भी। उसने आँखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और ना समझी से बोली, हमें आपकी याद क्यों आएगी? अहाना का सवाल सुनकर अक्षय चौंक गया। याद क्यों आएगी का क्या मतलब हुआ? हम एक दूसरे से इतने दूर हैं, मुझे तो आपकी इतनी याद आती है और आप पूछ रही हैं कि याद क्यों आएगी, मतलब आपको मेरी कभी याद नहीं आती? हैरान के साथ वो दुखी भी था। शायद अहाना के इस सवाल ने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया था। एक तरफ अक्षय अब खफा खफा और दुखी नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ अहाना अब भी औझन में उलझी थी। रोज सुबह शाम हमारी बात तो होती है, फिर आपको हमारी याद क्यों आती है? वो अलग ही सवाल में उलझी थी। वहीं उसका ये सवाल सुनकर खींचते हुए अक्षय का मन किया था कि अपने सारे बालों को नोच डाले, पर उसने संयम से काम किया और खुद को शांत करते हुए हल्की नाराजगी से बोला, अहाना, फोन पर बात करना और आपके सामने मेरे पास होने में बहुत फर्क है। आप इतनी दूर हैं मुझसे, मैं आपको जी भरकर देख नहीं पाता, मन होने पर आपको अपने सीने से लगाकर महसूस नहीं कर सकता। बताइए, मैं आप कैसे मिस ना करूं आपको? अगर इतना ही मिस करते हैं आप मुझे, तो एक दो दिन की छुट्टी लेकर आ जाइए ना। मम्मी पापा भी आपको बुलाने को कह रहे थे। पापा जी से बात भी की थी उन्होंने। अंतरा और निशांत भी आपके साथ होली खेलना चाहते हैं। इकलौते जीजू हैं आप उनके। कितना कुछ प्लान किया हुआ है उन्होंने। अगर आप आएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब खुश हो जाएंगे। और आप, मेरे आने पर आपको खुशी नहीं होगी क्या? आप बस बाकियों के लिए मुझे वहां बुलाना चाहती हैं? अक्षय ने बेहद संजीदगी से सवाल किया, जिसके जवाब में अहाना कुछ पल खामोश रह गई, फिर हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपको बुलाना नहीं चाहते, पर अपनी ख्वाहिश के लिए हम आप पर दबाव नहीं बना सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो हम कोई शिकायत नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि जानते हैं कि आप कितने व्यस्त रहते हैं, और यहाँ आना यानी कम से कम दो दिन बर्बाद करना। पर हम अपने परिवार का दिल भी नहीं दुखाना चाहते, उनका बहुत मन है कि आप यहाँ आए, बस इसलिए कह दिया। अब भी आप पर कोई दबाव नहीं बना रहे हम। अगर मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम समझा लेंगे सबको कि आपके पास वक्त नहीं होता। अहाना इतना कहकर चुप हो गई। अक्षय को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। कुछ देर यूं ही दोनों बात करते रहे, फिर अहाना को नींद आने लगी तो दोनों ने बाय बोलकर फोन काट दिया। कॉल करते ही अक्षय अन्वय के कमरे में पहुंच गया, जो इत्मीनान से बेड पर बैठा, कानों में हेडफोन लगाए, लैपटॉप पर शायद कोई मूवी देख रहा था। अक्षय ने दो तीन बार उसे आवाज दी, पर अन्वय गूंगा, बहरा और अंधा बना पूरी तरह से मूवी में घुसा हुआ था। उसे कोई होश ही नहीं था कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। आखिर में खींचते हुए अक्षय ने उसके हेडफोन को निकाला और गुस्से से चीख पड़ा, अन्वय। वो उसके कान में इतनी तेज चीखा था कि बेचारा अन्वय एकदम से हड़बड़ाहट में पीछे की ओर खिसक गया और दोनों हथेलियों से अपने कानों को भींचे, फटी आंखों से उसे देखते हुए घबरा कर बोला, क्या कर रहे हैं भाई, कान के पर्दे फाड़ेंगे क्या? नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था कि तेरे कान अब तक सही सलामत हैं या स्वर्ग से धार गए, क्योंकि इतनी देर से तो तुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। अक्षय ने गुस्से में जबड़े भींचते हुए त्योरियां चढ़ाकर उसे घूरा। अन्वय उसकी बात सुनकर एक बार फिर चौंक गया, आप मुझे आवाज़ दे रहे थे? कब, क्यों? वाह जीवा, बेचारा पूरा ही बहरा बन गया था और अब अपने फैलाए रायते से बिल्कुल अनजान बनकर मुंह फेरने लगा था। ये देखकर अक्षय और ज्यादा खींच उठा।
तब जब तू अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था और अंधा गूंगा बहरा बन यहाँ बैठकर मूवी देख रहा था, अक्षय ने गुस्से में दांत पीसे और अब अन्वय को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अक्षय के गुस्से की वजह समझ आई और अगले ही पल उसने माफी भी मांग ली। सॉरी भाई, वो हाई वॉल्यूम पर थी और बड़ा मज़ेदार सस्पेंस से भरा थ्रिलिंग सीन चल रहा था, इसलिए कहीं और ध्यान नहीं गया। अन्वय ने माफी तो मांग ली, पर अक्षय अब भी उससे नाराज था और थोड़ा गुस्सा भी था। अच्छा, अब नाराजगी छोड़ भी दीजिए और बताइए कि इस वक्त आपको मेरे कमरे का रास्ता कैसे याद आ गया? अन्वय ने माहौल को बदलने के लिए मुस्कुराते हुए सवाल किया और अपने यहाँ आने की वजह याद आते ही अक्षय के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। शायद जिस काम से वो यहाँ आया था वो उसकी नाराजगी से ज्यादा जरूरी था, सो उसने गुस्सा थूका और परेशान सा बोला, अन्वय, होली पर तेरी भाभी के पास जाना है, कोई जुगाड़ लगा? सीधे साधे अक्षय की सारी उम्मीद अपने इस शैतान, नटखट और खुराफाती भाई से थी, जो हर सिचुएशन को टेढ़े तरीके से हैंडल करके पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और अभी उसको ऐसे ही किसी जुगाड़ की जरूरत थी। अन्वय ने सर हिलाया, फिर गंभीर स्वर में सवाल किया, कब जाना है भाई? परसों होली है और उससे पहले पहुंचना है, पर आपकी छुट्टी? एक समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई और हल अक्षय ने तुरंत ही उसके सामने रख दिया, होली की तो छुट्टी है ही, जरूरत पड़ी तो एक दो दिन की और ले लूंगा। तो एक काम करते हैं, कल आपके हॉस्पिटल से आने के बाद निकलते हैं, शाम को निकलेंगे तो रात तक या अगली सुबह जल्दी पहुंच ही जाएंगे। अन्वय ने तुरंत ही पूरा प्लान बना लिया, पर अक्षय के माथे पर बिखरी सिलवटें उसकी परेशानी को जाहिर कर रही थीं, जिसका हल अभी बाकी था। मम्मी को कैसे मनाएगा, वो सीधे ही इनकार कर देंगे और मैं उनका दिल दुखाकर उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी हिटलर मम्मी थी, जिसकी याद अक्षय ने अन्वय को दिलाई और वो कुटिलता से रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा दिया, मैं नहीं मनाऊंगा, मैं तो सीधे अपने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग फिक्स करूंगा और होम मिनिस्टर को वो हैंडल करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। आप भाभी के साथ होली सेलिब्रेट करने जाएंगे, वो भी मम्मी की इजाज़त के साथ। उसकी शरारत से चमकती आंखें साफ जाहिर कर रही थीं कि उसके खुराफाती दिमाग में कोई ना कोई शैतानी आइडिया जरूर चल रहा था। अन्वय, तू करेगा क्या और कैसे? अक्षय अब भी कुछ परेशान था, जबकि अन्वय एकदम रिलैक्स। उसने बड़ी ही बेफिक्री से जवाब दिया, रिलैक्स ब्रो, वाई फियर व्हेन अन्वय इज हियर? आई विल हैंडल एवरीथिंग इन माय ओन वे, सो यू डोंट वरी एंड जस्ट फोकस ऑन माय ब्यूटीफुल भाभी। अन्वय ने शरारत से मुस्कुराते हुए आई विंग की और अक्षय उसके सर पर चपत लगाते हुए वहां से चला गया। अन्वय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा कि जो प्लान उसके दिमाग में आया है उसे अंजाम तक कैसे पहुंचाना है और लेडी हिटलर को अपने जाल में कैसे फंसाना है।